ओम शांति। प्राण प्रिय बाबा के अनमोल रत्नों की माला में जगमगाती, झिलमिल करती बेशकीमती रतन सुमधुर भाषिणी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का हम सभी ब्रह्मावत्स हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोटा की धरनी पर जन्मी आदरणीय दीदी जी ने परमात्म प्यार की पहली बूंद 1975 में धारण की और तब से ज्ञान गंगा बन अनवरत जन जन को ज्ञान अमृत का पान करा रही हैं। सन 1991 में चिकित्सा अध्ययन पूर्ण करके शारीरिक व आत्मिक उन्नति हेतु आप सतत प्रयासरत हैं। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग की मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आपके अनुभवी व अनुकरणीय जीवन की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आज हम सभी लाभान्वित होंगे। विषय है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम गीत सुन रहे थे जो मन वचन कर्म से पवित्र हैं, वो ही महान है। तो ब्राह्मण जीवन की जो महानता है, विशेषता है, वो पवित्रता है। या हम कहें कि नवीनता है, अलौकिकता है, वो पवित्रता है। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें अपने ही समान पतित से पावन, यानी पतित पावनी, जैसे कहा कि बाबा पतित पावन है, तो हमें भी बाबा ने अपने ही समान बनाया है। अगर हम पवित्रता को समझें तो पवित्रता बाबा केवल ब्रह्मचर्य को नहीं कहते। पवित्रता की जो परिभाषा है वो अपने आप में बहुत बेहद है। हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य तो उसका एक स्टेप है या प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है उसकी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना वो तो है, लेकिन बाबा कहता है उसके साथ साथ ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, और शिवाचारी माना शिव बाबा के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। तो जो बाबा के संकल्प बोल और कर्म रहे ब्रह्मा बाबा के, ऐसे ही हमारे भी संकल्प बोल और कर्म हो, यानी मन वचन कर्म हो। बाबा के हर कदम पर हम कदम रखकर चलें, जैसे बाबा आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे, फरमान बरदार रहे, जो बाबा के हम कदम बताते हैं उस अनुसार ही हमारा ये ब्राह्मण जीवन चले। फिर बाबा कहते हैं केवल काम विकार पर विजय पाना पवित्रता नहीं है, लेकिन कोई भी विकार का अंश वंश वो भी अपवित्रता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके जो साथी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव छल कपट ये सब भी अपवित्रता है। तो इन सब पर विजय पाना यानी संपूर्ण निर्विकारी बनना, जैसे हम सतयुग की अपनी डिग्री कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, माना संपूर्ण पवित्र है। और तीसरा कि ये जो विकार हैं वो स्वप्न में भी प्रकट ना हो। मन वचन कर्म तो ठीक है, पवित्र होना चाहिए, लेकिन स्वप्न में भी अगर ब्रह्मचर्य भंग होता है या किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या क्रोध के वश हम कर्म करते हैं स्वप्न में भी, यानी अभी तक भी हमारे संस्कार में वो है, तो बाबा कहता है वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं मानी जाएगी। फिर उससे भी आगे बाबा कहते हैं अगर आलस्य अलबेलापन है, वो भी विकार के अंश हैं, तो अगर दिनचर्या जो हमें ब्राह्मण जीवन की मिली है अमृत वेले से रात तक, उसमें कहीं आलस्य अलबेलापन है तो वो भी अपवित्रता है। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चलते हैं, तो व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और उसके आगे बाबा कहता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अगर दुख और अशांति का अनुभव होता है हमें कोई भी कारण से, तो वो भी तब अनुभव होगा जब अपवित्रता है। तो इतनी महीनता है पवित्रता की, तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी पवित्रता की स्टेज कहाँ तक है। जो बाबा हमें संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं, तो वो उस पावनता तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत लोग हैं जो शादी ब्याह नहीं करते, घर गृहस्थ में रहते हुए यानी परिवार में रहते हुए, या जो संन्यास कर लेते हैं तो घर बार छोड़ करके कहीं आश्रम बनाकर रहते हैं, लेकिन पवित्रता की धारणा अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो विधियां भी अपनाते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी विधियां जो है वो कितना उसमें वो सफल होते हैं। कई तो भले ही देखने में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं यानी संत कहलाते हैं महात्मा कहलाते हैं, लेकिन फिर भी विकारों के वश हो गए। तो आज हम देखते हैं कि कुछ तो उसके कारण जेल में भी हैं। यानी उनकी जो पवित्रता की विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। कुछ तो स्त्री को मां समझते हैं कुछ पंथ में, जैसे रामकृष्ण मिशन है, तो वो हर स्त्री को मां की नजर से देखेंगे, मां के प्रति हमारी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। कुछ तो स्त्री को देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं है, जो कहा कि माना, जो शास्त्रों में मान लिया कि वो नरक का द्वार है, माना उनको दोषी मानते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें विधियां दी वो विधियां परमात्म विधियां हैं कि मैं आत्मा आदि अनादि पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, परम धाम में भी मैं आत्मा पवित्र हूं, और जब हम सतयुग त्रेता में हैं, आदि हमारा जो देव स्वरूप है वो भी पवित्र स्वरूप है। तो ये स्मृति दिलाई बाबा ने हमें कि पवित्रता मेरा नेचुरल स्वभाव है, और जब ये स्मृति आई तो समर्थी आ गई कि दो युगों तक हम आत्मा और शरीर सहित, देवताएं शरीर भी पावन है और आत्मा भी पावन है, तो हम दो युगों तक पवित्र रहे हैं, तो हमारे लिए पवित्रता अननेचुरल नहीं है। और फिर बाबा ने हमें शक्ति दी, बाबा को याद किया, हिम्मत रखी हमने, तो उस हिम्मत से मदद मिली। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी, जिसे वो सन्यासी भी असंभव समझते हैं, या आज की दुनिया में मेडिकल साइंस भी कहेगी कि ये अननेचुरल है ना? कहते एक सिगमंड फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने दुनिया में ये सिद्धांत दे दिया कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अननेचुरल है, और उससे उसको बीमारियां हो सकती हैं, यहां तक कि उसके दिमाग पर भी उसका असर आ सकता है। लेकिन बाबा ने तो लाखों, आज हमारे लाखों परिवार हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का पालन करते हैं, तो हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। जो भी यहां सभा में भी बैठे हैं वो चेक कर सकते हैं अपने आप को कि हम सब प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें विधियां बताई, आत्मिक स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, पहले मेरी अपनी आत्मिक स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं, और दूसरों को भी हमें किस तरह से व्यवहार में आना है, क्या कहां हमारी दृष्टि होनी चाहिए हर एक आत्मा के प्रति, उनकी प्रकृति में, यानी हम जिससे भी व्यवहार में आते हैं उनको भी हमें आत्मा रूप में देखना है, आत्मा रूप से व्यवहार में आना है। तो जब हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति से व्यवहार में आते हैं तो पवित्रता की धारणा हमारे लिए सहज हो जाती है। ये विधि किसी ने नहीं बताई, आज तक कितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें विधि बताई ना, हमारा जो सत्य स्वरूप है वो बाबा ने हमें रियलाइज कराया। लेकिन अगर हम इसे भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, ब्राह्मण बन गए, लेकिन निरंतर हमारी आत्मिक स्मृति नहीं रहती है। जब हम कार्य व्यवहार में जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ही हमारा कार्य व्यवहार होता है आज की कलयुगी दुनिया में, तो अगर देह अभिमान में आ गए और हमारी दैहिक दृष्टि हो जाती है, तो फिर हमारी उस स्थिति में फर्क पड़ सकता है, जिसको बाबा कहता है कि दृष्टि वृत्ति किसी को देखकर चंचल हुई, यानी किसी के देह के प्रति आकर्षण हो गया, तो वो हो सकता है, क्योंकि आज की दुनिया तो है ही देह की दुनिया। देह की दुनिया है माना वो अपने देह को आकर्षक बनाने के लिए ही उपाय करते हैं, किस तरह से कपड़े पहनेंगे, इस तरह से बाल बनाएंगे, या कोई सचमुच ही सुंदर भी होते हैं, फीचर्स अच्छे होंगे, रंग गोरा होगा, बाल अच्छे होंगे, कुछ भी होगा, चाहे मेल है या फीमेल है, तो कहां भी अगर हमारी देह पर नजर गई और देह के आकर्षण में हम आ गए, तो बाबा कहता है देह को टच करना माना, देह को टच किया माना सांप को टच किया, माना संकल्प से भी किया, हाथ से टच करने की बात नहीं, संकल्प से भी आपने टच किया तो सांप को टच किया, और सांप को टच किया माना वो सांप काटेगा, यानी उसके अंदर वो विष होता है, और वो विष का प्रभाव ना आए ये हो नहीं सकता, और एक बार उस प्रभाव में आ गए तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन में विकार के वशीभूत होना वो एक का 100 गुना दंड, जो कोई भी विकर्म आत्मा से होता है तो वो महापाप है। यानी हमेशा हमारी दृष्टि जो है वो पवित्र हो, शुद्ध हो किसी भी आत्मा के प्रति। अगर बाबा इसको मुरली में कहते हैं सिविल आई और क्रिमिनल आई। सिविल आई माना सदा हमने आत्मा को ही देखा, शरीर से वो कैसे भी हैं, सुंदर हैं, नॉर्मल हैं या कुरूप हैं, जो भी हैं, कोई भी जिसको भी हम संपर्क में आते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसके वो देह के स्वरूप को देखते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारी सिविल आई है। लेकिन अगर हम देह को देख करके ही प्रभावित होते हैं तो वो क्रिमिनल आई हो जाती है। और ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर दृष्टि वृत्ति चंचल होती है तो बाबा कहते हैं उसे उनको पवित्रता की फाउंडेशन में कमजोर माना जाएगा। वैसे आप कर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन दृष्टि वृत्ति से अभी भी कमजोर हैं, तो इसका मतलब नामधारी ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण अभी नहीं है, सच्चे ब्राह्मण अभी तक नहीं बने हैं। और अगर ब्राह्मण आत्माओं के प्रति हमारा ये देवी परिवार है इसके भी संपर्क में आते हैं तो ब्राह्मण आत्माओं में तो निश्चित है कि विशेषताएं हैं, गुण हैं। तो बाबा कहता है उसमें कई बार देह पर दृष्टि नहीं जाती लेकिन उनके गुणों और विशेषताओं पर नजर जाती है। और अगर बाय चांस देह पर भी अगर हमारी दृष्टि जाती है तो बाबा उसको कुल कलंकित कहता है, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने हैं। और लौकिक में भी दुनिया में भी अगर कोई भाई बहन का कोई ऐसी दृष्टि हो तो उसको कुल कलंकित माना जाता है। तो यहां भी अगर देवी परिवार में किसी के ऊपर हमारी दृष्टि जाती है तो बाबा फिर उसको भी महा महा पाप कहता है। और बाबा कहता है कि ये ऐसे है जैसे कि हमें पांचवी मंजिल से गिराने के समान है। यानी अब तक ये जो हमने कमाई की है अगर कहीं भी हमारी ये धारणा कमजोर होती है तो अब तक की कमाई सारी खत्म हो जाती है, जिसको मूल्यों में बाबा कहते हैं की कमाई चट हो जाती है। तो अगर योग अग्नि पुराने पापों को भस्म कर सकती है तो बाबा कहता है कि ये जो काम विकार की अग्नि है ये सारे पुण्य को खत्म कर देती है, वो पाप को खत्म करती है और ये पुण्य को, अब तक आपने जो भी तन मन धन से सेवा की है, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है अपने आप को, योग से शक्तियों को जमा किया है, सब जमा का खाता खत्म। और अगर हम नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बात फैलती है और हम हमारे कारण बाबा का नाम बदनाम होता है तो बाबा क्या कहते हैं, सद्गुरु का निंदक सद्गुरु का निंदक ठहर ना पाए। यानी वो 21 जन्मों की जो प्राप्तियां हैं उसकी मंजिल टिक नहीं सकती। यानी ऊंच पद माना राजाई पद तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें वो प्राप्तियां उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है इतनी कड़ी नजर अपने आप पर रखनी है। कई बार सोचते हैं कि गुण है, विशेषता है, ये आत्मा से हमें बहुत स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, इनके अंदर सेवा की विशेषता है, इनका ज्ञान योग बहुत अच्छा है, या ये भाषण बहुत अच्छा करते हैं, या इनसे हम बहुत अपनापन महसूस करते हैं, इनसे हम दिल की बात कर सकते हैं, मानो देह की बात नहीं लेकिन गुणों पर प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर हम प्रभाव में आएंगे तो झुकाव में भी आ जाएंगे, उस आत्मा के प्रति हमारा झुकाव ज्यादा होगा, ज्यादा झुकाव होगा तो हम उनसे ज्यादा मिलना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे, माना एक्स्ट्रा में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं स्नेह है तो सबके साथ स्नेह है, लेकिन अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा में चले गए तो वो नजर आता है। और एक्स्ट्रा में जाना माना कई बार कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा लगता है यही व्यक्ति चाहिए, इसी से ही ना हमें अनुभव होता है, इसी से ही हम हमारी दिल की बात हम कर सकते हैं। तो ये ही माना ही जहां आता है बाबा कहता है माना दाल में काला है, और वहां हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर किसी के ध्यान में ये बात आती है ना, होता है ये चीजें दुनिया में भी लोगों को पता चल जाती हैं कि इनका इनके साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, ब्राह्मण परिवार में भी पता लग जाती है, और जब पता लग जाती है तो कोई इशारा देने की कोशिश करता है कि ये आपका व्यवहार ये ठीक नहीं है। तो फिर कभी भी जो व्यक्ति इसमें होता है मना प्रभाव में होता है वो उसे स्वीकार नहीं करते, ज्यादातर स्वीकार नहीं करते, कहते नहीं आपको गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हम बातें करते हैं, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है अगर हमने स्पष्टीकरण दिया, कोई हमें इशारा देता है और हम स्पष्टीकरण देने लग जाते हैं उसका, ये गलत है या सही है, ऐसा है या नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने पाप का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यानी अपने पाप की लकीर को हम लंबा कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दो, जब है ही नहीं तो उसको बढ़ाना ही नहीं है ना, आगे के लिए सदा के लिए हम सावधान हो जाएं इसके प्रति। अगर हम ये भी सोचते हैं कि आज की दुनिया के वातावरण में हम रहते हैं, कलयुगी वातावरण में रहते हैं, और कलयुगी वातावरण में जो भी हम देखते सुनते, कई ऐसे दृश्य अचानक हमारे सामने आ जाते हैं जो मन चित्त नहीं होता। आज सोशल मीडिया का सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है, आज टेलीविजन भी देखते हैं, तो जो भी देखो पढ़ो वो सब में क्या है, कहीं ना कहीं अश्लीलता है ही है। तो अगर उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ जाता है ना, ऐसे नहीं कि दुनिया में हम रहेंगे तो कोई आंखें बंद कर लेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, नॉलेज दी है ना बाबा ने हमें, त्रिकालदर्शी बनाया, समय की पहचान दी है, तो हमें पता है कि ये समय ही ऐसा है और हमारा कर्तव्य क्या है। तो अगर हम ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं क्योंकि वातावरण ही ऐसा था ना, काम ही ऐसा था ना, तो उसका असर आ गया हमारे ऊपर, तो बाबा कहता है दूसरे को दोषी नहीं, अपने को ही दोषी समझो कि ये कहां ना कहां मेरी कमजोरी है। तो जब तक हम अपने को दोषी नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी पवित्रता से वायुमंडल को बदल लें, अपनी पवित्र दृष्टि वृत्ति से अन्य आत्माओं की भी दृष्टि वृत्ति को बदल दें, वो नहीं कर पाएंगे। हमें पावन बनाना है आत्माओं को भी और प्रकृति को भी, यहाँ तक कि प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाने की जिम्मेवारी है। तो अगर मेरे ऊपर प्रभाव आ गया तो कौन परिवर्तक हुआ, उन्होंने मुझे बदल दिया ना, बदलना किसको है, मुझे मेरे संपर्क से उन्हें पवित्रता का अनुभव हो। ऐसे हमारी दादियां अनुभव सुनाती थी कि शुरू शुरू में जब सेवाएं शुरू हुई सेवा केंद्रों पर, तो लोग समझते थे ना बहनों की संस्था ये, तो ये तो पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है, क्या सिखाते हैं, तो कई ऐसे ही अंदर आ जाते थे, बाबा कई बार मुरलियों में कहते भी हैं। लेकिन जब आकर के वो बहनों से ज्ञान सुनते थे, जो अपना ज्ञान है वो सुनते थे, और जो उनकी स्थिति का वो अनुभव करते थे, माना उनको देवियों जैसा उनसे अनुभव होता था, तो आए वो कुछ और सोचकर थे और उनकी स्थिति से यानी उनकी वृत्ति से और जो ज्ञान सुना उससे उनके अंदर पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता था, जीवन ही बदल गई, जैसे बाबा के बन गए, वारिस बन गए वो। मुझे याद है जब मैं पहली बार विदेश गई थी, अमेरिका जाना हुआ था, तो वहाँ पर एक शहर में जब हम थे तो कोई उनके शहर के मेयर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, उनका जन्मदिन था या कोई ऐसा ही सेलिब्रेशन था, और वो बहन उन्हें उनकी सेवा की हुई थी तो वो उनको बुलाते थे जब भी उनके घर में फंक्शन होता था, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। और उस समय ही मैं वहाँ उस सेंटर पर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम उनके यहाँ जाने वाले हैं तो आप भी चलो, आप मधुबन से आए हो तो सेवा होगी। पर उन्होंने कहा कि आपने यहाँ की कोई पार्टी शायद नहीं देखी, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी वहाँ, तो बोला यहाँ की पार्टी भारतवासियों जैसी नहीं होती है, है ना, वो हम जानते हैं विदेशी कल्चर क्या है, वो किस तरह से आपस में मिलते हैं और कैसे उनका खान पान और सब होता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर फिर भी आपके आने से सेवा होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं, मुझे अंदाज तो था ही, तो मैंने अपनी स्थिति, मैंने कहा बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कैसी भी हो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को उसी तरह से अपनी मन की सेटिंग की, और फिर हम गए वहाँ पर, तो ऐसा ही वातावरण था वहाँ, तो ओपन कल्चर है एकदम उनका, तो मिलना भी ऐसे ही होता है, सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, फिर वो गले मिल करके भी मिलते हैं और सब तरह से। और सारी पार्टी में जो डांस वांस चला, जो उनके कपड़े वपड़े थे, वो विदेशियों के कपड़े भी सबको मालूम है कि वो कैसे पहनते हैं सब, तो मैंने देखा कि वो सब देखते हुए, पहली बार ही सब कुछ देखते हुए भी बिल्कुल मेरी स्थिति अच्छी रही। माना मैंने सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखा और बहुत अच्छा, सबसे जो भी हम मिलते रहे, बातचीत करते रहे। फिर जब वो पार्टी पूरी हुई और हम मिल रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स से, तो उन्होंने हमको एक बात कही कि बोला हमारी आज की पार्टी में, वो बहन थी और मैं थी, तो उन्होंने कहा हमारी आज की पार्टी में आप दोनों एंजल थे, और इतना अच्छा हमें लग रहा था, तो हमारे वाइब्रेशंस को लोग फील करते हैं कि ये हमसे अलग हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं, हमारी प्यूरिटी दिखाई देती है। बाबा कहते हैं ना प्यूरिटी की पर्सनालिटी, प्यूरिटी से ही हमारे ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी है, प्यूरिटी की ही जैसे कहा कि रॉयल्टी है, माना पूरे कल्प में हम आत्माएं श्रेष्ठ रहे हैं, वो पवित्रता की धारणा के कारण है। आज सन्यासियों के आगे भी लोग झुकते हैं या कन्या पूजन भी करते हैं, तो किस धारणा के आधार पर, उनकी पवित्रता के आधार पर ही वो उनके आगे झुकते हैं। और या जड़ चित्रों की पूजा होती है आज मंदिरों में, हमारा पूज्य स्वरूप है, तो जड़ चित्रों को भी चेतन से ज्यादा पवित्र समझते हैं, तो उनकी पूजा भी पवित्रता के विधि पूर्वक होती है। अगर कोई ऐसा दिन होता है देवी देवताओं का व्रत उपवास करते हैं, तो वो इस धारणा को वैसे नहीं पालन करते, लेकिन उस दिन विशेष वो पवित्रता का पालन करेंगे, भोजन की भी शुद्धि रखेंगे, तब जाकर के वो मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। या जो पुजारी होता है वो भी पवित्रता की विधि पूर्वक ही मूर्ति को टच करता है, तो इतना महत्व अभी तक वो भक्ति मार्ग में भी चला आ रहा है उसका। और बाबा कहता है कि आप आत्माएं जब परम धाम में हो, तो परम धाम में तो पवित्रता के कारण आपकी चमक, आप आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं की चमक से ज्यादा है, बाबा के समीप हैं, तो जैसे आसमान में सितारे में जो चमकते हुए सितारे होते हैं उन पर नजर जाती है, तो तो ऐसे ही पवित्रता की चमक आप आत्माओं के अंदर है और वो अभी वर्तमान संगम युग में भी वो चेहरे पर उस प्यूरिटी की झलक और फलक होती है। हर ब्राह्मण आत्मा, हम जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना वो रूहानियत हमारे चेहरे पर होती है और हमारा चेहरा सेवा करता है। आप कुछ बोले ना बोले, है ना, लाखों आत्माओं में भी अगर एक ब्राह्मण आत्मा खड़ी है तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा, इतना अंतर आ जाता है। वो बाबा कई बार हमें कहते हैं शिव बाबा परम पवित्र है ना, तो हम उनके संग में रहते हैं तो उनका रंग हम आत्माओं पर है और वो दिखाई देता है। तो वो देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं, जो चित्र हैं, उनकी वो उनके चेहरे में भी वो झलक दिखाई देती है। और जब हम सतयुग त्रेता में हैं, सतयुग त्रेता में तो हैं ही देवी देवताएं, चैतन्य देवी देवताएं हैं, तो अपने आप में ही वो रॉयल्टी है, वो श्रेष्ठता है और उस पवित्रता के कारण ही सुख शांति समृद्धि है। यानी 100% सुख शांति समृद्धि का आधार हमारा वो पवित्रता है। और अभी ब्राह्मण जन्म में तो ब्राह्मण जन्म की जो पवित्रता है वो तो बाबा कहता है आप महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हो। घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे कहा वो तो असंभव समझते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं तो आज के जो नामी ग्रामी महात्माएं हैं उनको भी हम चैलेंज करने वाले बन गए। तो पवित्रता हर एक के लिए, चाहे वो घर गृहस्थ में हैं, चाहे वो कुमार हैं, कुमारी हैं, चाहे समर्पित हैं, ना सेंटर पर रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, जहां भी हैं, तो हमारी पवित्रता की धारणा हमेशा जैसे बाबा ने कहा उस अनुसार परफेक्ट होनी चाहिए। पवित्रता के कारण ही जो देवी देवताओं का पूजन होता है वो विधि पूर्वक होता है। और किसी धर्म में हम देखेंगे हर कर्म की पूजा नहीं होती है। आज धर्म पिताएं हुए, उन्होंने धर्म स्थापन किया तो पवित्रता के विधि पूर्वक ही धर्म स्थापन हुआ। बिना पवित्रता के कोई धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो जो पवित्र आत्माएं ऊपर से आई उनकी पवित्रता की शक्ति से ही ये वो धर्म क्रिश्चियन धर्म बना, मुस्लिम धर्म बना, बौद्ध धर्म बना। अगर वो पहले से ग्रस्ती थे तो संन्यास लिया, जैसे महात्मा बुद्ध ने संन्यास लिया ना? लेकिन जो पूजा होती है, जो उनके स्थान बने हुए हैं, वो हिंदू धर्म में या आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो पूजा होती है ऐसी पूजा की विधि नहीं है कि हर कर्म सोने के समय, उनके जागने के समय उनका भोग लगता है, उनका श्रृंगार होता है, उनका कीर्तन होता है। कीर्तन माना आरती करते हैं, उनके गुणों का गायन करते हैं और वो भी साज और बाजों के साथ, बाबा कहता है। बाकी जगह जाएंगे तो साइलेंस होता है, हफ्ते में एक बार वो चर्च में संडे में इकट्ठे होंगे और वो जुम्मे के जुम्मे इकट्ठे होंगे, ऐसा होता है ना, बाकी दिन साइलेंस रहता है। लेकिन मंदिरों में हर दिन हर कर्म, और जो विशेष देवताएं हैं, इतनी भीड़ होती है वहां पर, हम सब जानते हैं कि आप जाते हैं, अगर आप भी देखने जाते हैं अपने यादगार को कि कैसे हमारे जो यादगार हैं वो पूजे जा रहे हैं, अब तो हमें स्मृति आ गई कि ये हमारे ही यादगार हैं, तो देखेंगे इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइन होती है कि मुश्किल से अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते भी हैं तो एक मिनट भी दर्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। एक मिनट भी आप खड़े होंगे तो एक धक्का आएगा या आपको कह दिया जाएगा कि आगे जाओ आगे जाओ। तो जड़ मूर्तियों के दर्शन का भी इतना महत्व है। और हम संगम युग में डायरेक्ट बाबा से, परमात्मा से कैसे मिलन मनाते रहे, अधिकार से ईश्वर की संतान है, डायरेक्ट ईश्वर की हम संतान है और आराम से बैठ करके बाबा तो कई बार कहते हैं कि वो कुंभ के मेले भी जो लगते हैं वो मेला क्या होता है, धूल मिट्टी खाने वाला मेला होता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हो सकता है कि रहने जो यहाँ जो हमें सुविधाएं की बात करते हैं रहने सहने की सुविधा में थोड़ा 19-20 हो, नहीं तो लगभग वो भी अच्छा ही होता है, पर कभी बहुत ज्यादा संख्या होती है तो हो सकता है कभी ऐसा हो, लेकिन हम कितना आराम से रहते हैं, खाते हैं, अपना ज्ञान योग करते हैं। और बाबा भी जब तक आते रहे, अभी भी जो हम बाबा से अव्यक्त वीडियो के द्वारा मिलन मनाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हमने बाबा से मिलन नहीं बनाया, बाबा से मिलन मनाया ऐसा ही अनुभव बाबा कराता है, क्योंकि वो तो करा सकता है ना। बाबा जब भक्ति में अनुभव कराते हैं, भक्तों को अनुभव करा देते हैं, तो हम तो डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं। तो वो जो मिलन मनाते रहे, वो भी कितना घंटों घंटों बाबा के सामने, बाबा रात रात भर भी कई बार बच्चों से मिलन मनाते रहे, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं इस बात को। तो कितना विधि पूर्वक सब चलता है जो बाबा ने ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना की, इतनी श्रेष्ठता माना प्यूरिटी की पर्सनालिटी बाबा ने हमारी बनाई, और इस पर्सनालिटी को सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी कहेंगे। आज कई प्रकार की पर्सनालिटी दुनिया में प्रसिद्ध होती है, शारीरिक पर्सनालिटी होती है, पोजीशन की पर्सनालिटी होती है ना, पोजीशन माना ऊंचे पद पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और भी साइंटिस्ट हैं, दुनिया के जो भी नामी ग्रामी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जो सारी दुनिया जिनको जानती है, वो भी पर्सनालिटीज माने जाते हैं। या कुछ लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में पर्सनालिटी होते हैं, यानी खेलों के आधार पर ऐसे खेल वो खेलते हैं कि वो जैसे ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया, या जैसे क्रिकेट में नामी ग्रामी हैं। शरीर की पर्सनालिटी वाले जो होते हैं वो जैसे मिसेज इंडिया या मिस वर्ल्ड जो भी बनते हैं, माना पूरी दुनिया में फिर वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि उन पर्सनालिटी से भी सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी जो है ना, भले ही वो दुनिया की जो बुक है उसमें आपका नाम नहीं है, लेकिन भगवान के जो हु इज हु हैं उनमें आपका नाम है। और ये पर्सनालिटी ये पूरे कल्प के लिए हमारी बन जाती है। एक बार संगम युग में हम प्यूरिटी का पुरुषार्थ करते हैं, और ये पुरुषार्थ करते हैं तो वो पुरुषार्थ हमारा जन्म जन्मांतर के लिए, हमारा पुरुषार्थ वो हमारा गुण व्यक्तित्व बन जाता है, हमारी वो विशेषता हो जाती है। तो पवित्रता कि जो कहा कि सर्व विकारों के अंश वंश भी नहीं आने चाहिए, तो ये तो काम विकार की बात हुई, लेकिन क्रोध, जैसे क्रोध को हम कई बार हल्की रीति से ले लेते हैं। बाबा ने पिछली मुरली में, अभी संडे की जो मुरली थी उसमें बाबा ने कहा कि क्रोध को हथियार समझ लेते हैं, कि इसके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। तो हम ब्राह्मण दुनिया वालों जैसा क्रोध तो नहीं करते ना, मोटे रूप में तो हम विजयी हो जाते हैं, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप कब प्रकट होता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी ने झूठ बोल दिया, या किसी ने हमसे ऐसा व्यवहार कर दिया जो हमें पसंद नहीं है, या अपमान ही कर दिया, हमारे ऊपर ही गुस्सा कर दिया, तो फिर हम थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हैं। नाराजगी माना हमारा जो चलन है, व्यवहार है, वो उस आत्मा के प्रति थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। हम बोलेंगे कुछ नहीं, माना देखने में आएगा हमने उसको सहन कर लिया, लेकिन अंदर में अगर व्यर्थ संकल्प चले उस आत्मा के प्रति, या नेगेटिव संकल्प भी चले, तो फिर हम कहेंगे कि अभी तक भी क्रोध पर संपूर्ण विजय नहीं है हमारी, या दूसरों की हम नेगेटिविटी देख लेते हैं, खासकर हम सोचते हैं ये इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं, इन्होंने कौन सा अपने गुस्से को जीत लिया, ये भी तो गुस्सा करते हैं। बाबा ने कहा बड़ों को भी देख लेते हैं, है ना, जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी देख लेते हैं, ये भी करते हैं तो हमने भी किया। तो फिर बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली में समझाया कि उन आत्माओं का जो तपस्या है वो लंबी, बहुत काल की तपस्या है, और बाबा पर उनका जो निश्चय है वो अटूट अटल है, तो लास्ट में वो फिर भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको फॉलो करने लगे, हमें फॉलो किसको करना है, फॉलो फादर करना है, और अगर हमने भाई बहनों को फॉलो करना शुरू कर दिया, ये भी करते हैं मैंने भी किया तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा हम बहानेबाजी, जो बहानेबाजी में आ जाते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि हमारा जो है वो क्या चार्ट हो जाएगा। तो मेरा भी जो क्रोध पर विजय करने का संस्कार है ना, उस पर मुझे अटेंशन देना है कि सूक्ष्म में भी कहीं मुझे किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं आता है। अगर आज की सभा में हम पूछे, आज सब भाई बहने बैठे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे, कैसा भी हमारी गलती करता है, बात नहीं मानता है, या जो भी कोई भी परिस्थिति बनेगी तभी गुस्सा आएगा, और वही हमारे लिए पेपर भी होता है, क्योंकि पेपर नहीं हुआ तो पास कैसे होंगे, बिना पेपर के मैं पास हो गई ऐसा तो हम नहीं कह सकते, है ना, तो कोई ना कोई ऐसा पेपर तो बनेगा ही, और हर एक के आगे पीछे कोई ना कोई एक आत्मा ऐसी होती ही है जो आपको किसी ना किसी तरह से ट्रिगर करती है कि आप ऐसा करो, और फिर उसमें हम विजयी हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ अब मैंने अपने इस संस्कार पर विजय पा ली। तो जो समझते हैं हाँ अभी तक हमने ना, बाबा कहते हैं काम विकार को जीतने में फिर भी हम बहुत अटेंशन देते हैं, उसमें जल्दी विजयी बन जाते हैं, लेकिन क्रोध में कई बार महारथी भी फेल हो जाते हैं। तो जो समझते हैं हमने विजय पा ली है वो हाथ उठाएं, क्रोध पर विजय पा ली हमने, किसी भी स्थिति में हमें क्रोध नहीं आता, यानी मन में भी नहीं आता, यानी आंखों से भी नहीं दिखता है। एक होता है कि बोलते नहीं है हम, लेकिन आंखों से दिखा देते हैं। देखो एक भी हाथ नहीं उठा रहे, एक ने हाथ उठाया, हा? चलो जिसने जिसने जीता वो हाथ उठाओ, ताली बजाओ उसके लिए। और ऐसे ही लोभ का सूक्ष्म रूप पना, ब्राह्मण बनने के बाद संतुष्टता का गुण हमारे अंदर आता है, तो दुनिया वालों जैसे हम कोई धन के पीछे लोभ नहीं करते, अभी हमें पता है हमारी अविनाशी कमाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है, तो हम इस कमाई पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन छोटी छोटी जो बाबा कहते हैं कामनाएं, कामना भी काम विकार का अंश बाबा कहता है कि हद की कामनाएं होती हैं, किसी व्यक्ति से भी हो सकती हैं, जब हम संबंध में आते हैं उनसे भी हम इच्छा रखते हैं, या वस्तुओं की भी इच्छा हो जाती है ना, ये बहुत अच्छी है, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को हम देखते हैं इसके पास है तो फिर तुलना में आ जाते हैं ना, कंपटीशन में भी आ जाते हैं कई बार कि अच्छा इसके पास है तो फिर मेरे पास भी होनी चाहिए। या खाने पीने का, अब ब्राह्मणों को किस तरह का हो सकता है सूक्ष्म में लोभ, ऐसा खाना होना चाहिए, ये खाने में होगा तो ही तृप्ति होती है, अगर ये नहीं है तो फिर लगता है जैसे कि कुछ खाया ही नहीं, है ना, जैसे कुछ लोगों को चावल खाने की आदत है और चावल नहीं मिले तो जैसे खाना ही नहीं खाया, कुछ लोग रोटी खाते हैं और उनको अगर चावल दे दिया जाए तो जैसे खाना ही नहीं खाया, या चाय कॉफी की आदत है और समय पर चाय कॉफी नहीं मिली, जैसे दुनिया में भी व्यसनी होते हैं ना, तो उनको व्यसन नहीं मिलता तो कैसी हालत हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, तो ये भी प्रकृति की चीजें, यानी वो हमें आकर्षित करती हैं। या सेवा में भी बाबा कहता है कोई ना कोई हद की कामना, जैसे भक्तों को होती है भगवान से कोई ना कोई कामना रख के ही जाएंगे मंदिर में, तो हम भी सेवा करते हैं बाबा की, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई अपनी इच्छा भी रखते हैं। तो ये भी बाबा कहता है लोभ का अंश है। हद के इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी हद की इच्छा हमारे अंदर जागृत ना हो। बाबा हमारी सभी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी करते हैं, अगर हमारा योग बल अच्छा है तो वो आवश्यकताएं हमारी अपने आप ही पूरी होंगी। आवश्यकता से ज्यादा ही बाबा हमें संपन्न रखते हैं, ये ब्राह्मणों का अनुभव है। लेकिन इच्छाओं के पीछे जाना जैसे परछाई को पकड़ने की कोशिश करना है, और परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है ना, आप रोशनी की तरफ जाओ परछाई अपने आप पीछे आएगी। तो ज्ञान सूर्य से हमारा योग लगा हुआ है, तो अपने आप ही सब प्राप्तियों से भी अधिक भरपूर हम अपने आप को अनुभव करेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में अपनी पवित्रता की धारणा को बनाए रखने के लिए बाबा ने दो तीन बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। एक तो भोजन, हमारा जो भोजन है वो शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, पवित्र आत्मा के हाथ से बना हुआ भोजन, यानी ब्राह्मण आत्मा ही उस भोजन को बनाए, बाबा को भोग लगा करके स्वीकार करा के हम उसे खाएं, या फिर कोई ऐसा नहीं है तो हम अपने हाथों से ही उसे बनाकर खाएं। तो भोजन की शुद्धि पर हमें ध्यान देना है कि हमारा भोजन, अगर कोई मजबूरी वश भी हम खाते हैं, मानो बाबा ऐसे हमें छुट्टी नहीं देते, पर किसी की नौकरी ऐसी है या कहीं जाना पड़ता है अचानक और ये संभव नहीं हो पाता, तो भी बाबा कहते हैं उसको आप दृष्टि दे करके पूरी तरह से बाबा को स्वीकार करा के फिर आप उस भोजन को स्वीकार करो। तो भोजन की पवित्रता, उसका भी महत्व है, जैसा अन्न वैसा मन पर असर आता है। फिर संग दोष से अपने आप को बचाना है, जो कहा कि जो चीजें हमारे देखने की नहीं है, जिस रास्ते हमें जाना नहीं, आज जो भी देखते हैं, कहा कि सब कुछ उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता है ही है, वो आपको काम विकार की तरफ ले जाती है, पर हमें हमारा वो रास्ता ही नहीं है। अगर किसी को दिल्ली जाना है और वो बॉम्बे वाली गाड़ी में बैठेगा तो दिल्ली तो नहीं पहुंचेगा। तो फिर जब हमारा वो रास्ता ही नहीं है तो हम उन चीजों को देखते ही क्यों हैं, उन्हें हम पढ़ते ही क्यों हैं। हो सके, माना जहां तक हो सके ना, जैसे परिवार में रहते हैं, अभी बच्चे चला के बैठे हैं तो अभी हम नहीं उनको रोक सकते, तो जहां तक हो सके मेरा बचाव हम कैसे कर सकते हैं, वो अपनी युक्ति निकाल लेनी चाहिए। और कुछ देखते भी हैं तो देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुना, साक्षी होकर के देखो। साक्षी स्थिति का यदि हम अभ्यास करेंगे तो फिर दुनिया में ऐसे वातावरण में स्थान पर रहते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो कोई भी प्रकार का जो संग दोष है, जैसे हम कहेंगे मीडिया का जो संग दोष है जो लग जाता है, कुछ लोग ज्ञान छोड़ करके चले जाते हैं, देखने में आता है उसका रीजन होता है प्यूरिटी, कहीं ना कहीं वो इस संग दोष में आए और बाबा का ज्ञान छोड़ करके चले गए। बाबा जब ब्रह्मा बाबा जब हमारे यज्ञ की स्थापना हुई और उस समय जितने भी विघ्न आए पवित्रता के कारण आए, आज भी पवित्रता के कारण विघ्न आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन जो उस समय समाज में उथल पुथल हुई तो लोगों ने कहा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका योग भी बहुत अच्छा है, जो आप सिखाते हो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक ही बात मत बोलो, जैसे सन्यासी हैं वो किसी को भी अपने जैसा फॉलोवर नहीं बनाते, खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन और किसी को नहीं कहते कि आप आप करो, तो ऐसे ही आप भी किसी को ये मत कहो ना, पवित्र रहो ये मत कहो ना। वैसे हमारा स्लोगन है पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा ने कहा ये मैं नहीं कहता हूं ना, ये तो शिव बाबा हैं और शिव बाबा को पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है और उसे उसके लिए हीरे चाहिए, माना वो कोई उसे कोई भीड़ नहीं लगानी है, बाबा की एक कहना है और बाबा ने ये धारणा के लिए कहा है और इसीलिए भले ही कम आत्माएं आए, कम बाबा के बच्चे बने, जैसे हीरे रतन होते हैं वो कम ही होते हैं। तो बाबा ने फिर ऐसा जवाब दिया उनको। तो पवित्रता की धारणा करने में जो भी विघ्न आते हैं कई बार उसका यही कारण बनता है, तो हम अपना योग बल बढ़ाएं। अगर हम अपना योग का चार्ट बढ़ाते हैं, अगर 2 घंटे से हम 4 घंटा अपने योग को ले जाते हैं, तो इतना बाबा की जो शक्ति हमें मिलती है कि किसी प्रकार के विघ्न है, बाबा कहते हैं वो लगन की अग्नि उस विघ्न को समाप्त कर देती है। वो कब वो बंधन मुक्त हो जाएंगे आप, आपको भी पता नहीं चलेगा, इतना सहज रास्ता आपके लिए निकल जाएगा। कई माताएं बंधन में होती हैं इसी के कारण होती हैं। तो हम अपना जितना योग बल बढ़ाएंगे, वैसे भी बांधेलियों की लगन की तो बाबा महिमा करते हैं कि उनके जैसा योग और किसी का नहीं होता, क्योंकि वो बाबा को ज्यादा याद करती हैं। विघ्न जो हैं वो उनकी लगन को बढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी कहाँ अगर हमारे योग में कमी है तो हम अपने योग बल को और मजबूत करें, तो इस पवित्रता की धारणा में हमें पूरी मदद मिलेगी। तो प्यूरिटी तो हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है और प्यूरिटी ही, जैसे कहा, हमारे इस ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन में हम मजबूत रहें और संपूर्ण पवित्रता जो बाबा हमसे चाहते हैं, हालांकि और बहुत विस्तार में इसका नहीं ले पाई, समय हो रहा है तो मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन वो पवित्रता की संपूर्णता तक हम पहुँचें ये लक्ष्य हमें रखना है, ताकि हम जल्दी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। ओम शांति।